16 नवंबर शुक्रवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। 800 साल पुराने सबरीमला मंदिर में प्रवेश के लिए केरल पहुंची तृप्ति देसाई को प्रदर्शनकारियों ने कोच्चि हवाई अड्डे पर रोका।
अगर तृप्ति देसाई जी को सबरीमला पे इंदर करना होगा तो हम सबके सीने पे पैर रखे ही इंदर कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले नेताओं में जुबानी घमासान।
क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे क्या, और रमन सिंह ने आकर के उखाड़ के फेंक दिया क्या उसको।
और विवेचना में आज बात उस शख्सियत की जिसके एक इशारे पर थम जाती थी मुंबई।
भाई साहब, रिमोट कंट्रोल क्या होता है? एक नया टर्म हो जैसे कि हाई कमांड होते हैं, इस ढंग से मैं रिमोट कंट्रोल।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई केरल के सबरीमला मंदिर में प्रवेश के लिए पहुंच गई हैं, लेकिन अपने समर्थकों के साथ वो अभी कोच्चि हवाई अड्डे पर ही फंसी हुई हैं। श्रद्धालुओं ने हवाई अड्डे से बाहर निकलने के रास्ते को बंद कर दिया है ताकि तृप्ति और दूसरी 6 महिलाएं सबरीमला तक ना पहुंच सकें। तमिलनाडु तट से टकराने वाले शक्तिशाली तूफान गज से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश हो रही है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इमारतें धराशायी हो गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली लाइनें टूट गई हैं। 80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। यूरोपीय नेता सोचे समझे शब्दों में ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के ब्रेग्जिट समझौते का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मे ने यूरोप से अलग होने के समझौते को कैबिनेट से तो पारित करवा लिया है, लेकिन उन्हें देश की जनता और संसद के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबास्टियन क्रूज ने कहा है कि इस मसौदे में किसी को भी धोखा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये समझौता सभी के लिए सही है और सबसे ज्यादा ब्रिटेन के लिए, जो बिना समझौते के यूरोपीय संघ से होने की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। वहीं फ्रांस के वित्त मंत्री का कहना है कि ब्रेग्जिट के कारण हो रही उथल पुथल अन्य यूरोपीय संघ के देशों के लिए चेतावनी है। फ्रांसीसी वित्त मंत्री ब्रूना ले मेरे ने कहा,
Chaque peuple est libre de décider de sortir du marché unique et de sortir de l'Union européenne.
हर देश इस साझा बाजार यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ब्रेग्जिट बताता है कि साझा बाजार को छोड़ने की आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा है और ब्रिटेन में कुछ ऐसे झूठे और गैर जिम्मेदार नेता हैं जिन्होंने ब्रिटेन के लोगों से कहा था कि यूरोपीय संघ को छोड़ने के फायदे होंगे। सच ये है कि ब्रेग्जिट एक दुस्वप्न साबित होगा। ये थे फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूना ले के शब्द। श्रीलंका के नव नियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे संसद में 3 दिनों के भीतर दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव में हार गए हैं। शुक्रवार को संसद में हंगामे का माहौल रहा। कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए राजपक्षे के समर्थक सदन के अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गए और विरोधी सांसदों और सुरक्षाकर्मियों पर मिर्ची पाउडर डालने लगे। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को पद से हटाकर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया था। राष्ट्रपति सिरिसेना ने संसद को भंग करने का प्रयास भी किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास में कत्ल किए गए पत्रकार जमाल खाशोजी के जनाजे की नमाज मक्का मदीना की पवित्र मस्जिद में पढ़ी गई। उनके बेटे सालाह भी इस प्रार्थना में शामिल हुए। इसी तरह से इस्तांबुल में भी उनके लिए नमाज पढ़ी गई। लंदन, पेरिस और वॉशिंगटन में भी प्रार्थना सभाएं की जानी हैं। जद्दा में पत्रकार जमाल खाशोजी के घर पर भी लोग श्रद्धांजलि दे सकेंगे। 6 सप्ताह पहले सऊदी अरब से आए एक विशेष दल ने इस्तांबुल में सऊदी दूतावास के भीतर कथित तौर पर खाशोजी की हत्या कर दी थी। सऊदी अधिकारियों ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें से कुछ को मौत की सजा भी दी जा सकती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया भर से जुटे वैज्ञानिकों ने किलोग्राम के माप को बदलने पर सर्वसम्मति से मोहर लगा दी है। पेरिस की एक तिजोरी में सुरक्षित रखे प्लेटिनम के बाट को अब किलो का मानक नहीं माना जाएगा। अगले साल मई से इलेक्ट्रिक करंट से मापे गए सटीक भार को ही मानक माना जाएगा। पेरिस में रखे गए बाट को 1884 में तैयार किया गया था, तब से क्षरण की वजह से इसके वजन में कुछ अंतर आ गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। मेरा नाम है संदीप सोनी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को जाने की इजाजत भले ही दे दी है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई आज अपने समर्थकों के साथ केरल पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें कोच्चि हवाई अड्डे से बाहर तक निकलने नहीं दिया। कोच्चि से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
सबरीमला में इतनी तब्दीली का माहौल आज से पहले शायद कभी नजर नहीं आया। तब्दीली की पहली झलक आज सुबह 4:30 बजे से शुरू हो गई, जब महाराष्ट्र से तृप्ति देसाई कोच्चि एयरपोर्ट पर पुणे से पहुंची। उनको प्रवेश करना था सबरीमला मंदिर में, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट के बाहर भी निकलने नहीं दिया। प्रदर्शनकारी सारा दिन ये नारे लगाते रहे ठीक एयरपोर्ट के अराइवल लॉन्च के सामने। एयरपोर्ट के बैगेज इलाके में तृप्ति देसाई ने कहा,
जो प्रोटेस्टर्स है वो अटैक करने की सिचुएशन है, उन्होंने दूसरे गेट से भी हमें लेके गए थे, वहाँ से भी गाड़ी अरेंज वगैरह की थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त जो है वो अटैक करने आए। सुबह से हमने 3-4 गाड़ियाँ भी बुक की, जो टैक्सी ड्राइवर है उनको कहा कि हमें अगर आप लेके जाएंगे तो गाड़ियाँ फोड़ देंगे। तो थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो थोड़ी कम होने के बाद पुलिस जो है वो हमें स्टे के लिए कोट्टयम या जहाँ पे पॉसिबल होता है वहाँ पे लेके जाने वाली है।
तृप्ति देसाई की सुरक्षा के लिए करीब 150 पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। जितना तृप्ति देसाई अड़े रहे सबरीमला पहुंचकर दर्शन करने के लिए, उतने ही अड़े रहे प्रदर्शनकारी। हिंदू आई के वेदी के अध्यक्ष आरवी बाबू ने कहा,
फॉर द लास्ट 7 to 8 आवर्स वी आर प्रोटेस्टिंग हियर अगेंस्ट द ट्राई ऑफ तृप्ति देसाई टू गो टू सबरीमला।
तृप्ति देसाई के खिलाफ हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो स्वामी अय्यप्पा की भक्त नहीं है। किसी भी हालात में हम उन्हें सबरीमला जाने नहीं देंगे, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आई हैं। ये थे आरवी बाबू के शब्द। और अगर तृप्ति देसाई पुलिस की मदद से सबरीमला पहुंचे तो सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ईश्वर ने एयरपोर्ट पर कहा,
तृप्ति देसाई जी को वापस जाना है, अगर तृप्ति देसाई जी को सबरीमला पे इंदर करना होगा तो हम सबके सीने पे पैर रखे ही इंदर कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली तृप्ति देसाई शुड गो बैक, दिस इज आवर रिक्वेस्ट।
प्रदर्शन कार्यों में महिलाएं भी थी और ज्यादातर बीजेपी महिला मोर्चा और हिंदू ऐक्यवेदी संस्था के थे। इस प्रदर्शन से ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस तरह से महिलाओं पर रोक लगाई जाएगी। जैसे एक महिला ने कहा कि यह हमारी संस्कृति का मामला है। इमरान कुरैशी, बीबीसी, कोच्चि एयरपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के आसमान में आज हेलीकॉप्टर जमकर उड़े। 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 72 सीटों पर मतदान से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर चुनावी सभाएं की, लेकिन मुद्दों के बजाय आरोप प्रत्यारोपों का शोर ज्यादा सुनाई दिया। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 72 सीटों पर मंगलवार को मतदान होना है। यही कारण है कि चुनाव प्रचार की गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। राजनेता एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं और यह सब करते हुए अधिकांश नेताओं के सुर तल्ख होते जा रहे हैं। शुक्रवार को अंबिकापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कई बार उखड़े।
4 पीढ़ी तक तुम लोग बैठे थे, तुमने क्यों नहीं किया, ये तो जवाब बताओ। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे क्या? आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे क्या? और रमन सिंह ने आकर के उखाड़ के फेंक दिया क्या उसको? नाना, आप स्कूल बना के गए थे और रमन सिंह ने आकर के हथौड़ा लेकर के स्कूल को तोड़ दिया क्या? क्या आप अस्पताल बना के गए थे और रमन सिंह ने अस्पताल को गिरा दिया क्या?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी अपने 60 सालों का हिसाब दे। एक दूसरी सभा में कुछ ऐसे ही सुर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक दिन पहले छत्तीसगढ़ से चुनाव प्रचार करके लौट गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धार्मिक नक्सली बताया और कहा कि जो राम की बात करते हैं उन्हें देश की परवाह नहीं है।
बीजेपी के लोग और हमारे मुख्यमंत्री आए कि वो काला चश्मा लगा करके कह रहे थे कि जो इनका नहीं वो किसी का नहीं। हम तो कहते हैं कि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो पिछड़ों का नहीं, आदिवासियों का नहीं, अल्पसंख्यकों का नहीं, अगड़ों का नहीं।
फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राजबब्बर पिछले पखवाड़े भर में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और वे इस बात से आश्वस्त नजर आए कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।
बहुत अच्छा रिस्पांस है कांग्रेस पार्टी का, और 15 साल से डॉक्टर की सरकार चल रही है और यहाँ की जनता को जिस तरह से अभाव में रखा है, इस बार जो है लोग उसका फैसला करेंगे।
सरकार बनाने का दावा कांग्रेस भी कर रही है और भाजपा भी। बसपा का कहना है कि इस बार तो उनकी ही सरकार बनेगी। इधर आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री भी तय कर लिया है, लेकिन मतगणना के बाद ही इन दावों की हकीकत पता चलेगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 17 नवंबर को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। कंबोडिया में 1970 के दशक में देश पर राज करने वाले खमेर रूज के दो वरिष्ठ नेताओं न्यूआन चिया और क्यू सांपोन को पहली बार नरसंहार का दोषी पाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाले एक आयोग ने इन्हें लगभग 20 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। कंबोडिया के इस सबसे बड़े नरसंहार के बारे में और जानकारी मेरे सहयोगी मोहम्मद शाहिद और सरप्रिया सांगवान की जुबानी।
खमेर रूज एक कट्टर कम्युनिस्ट आंदोलन था जिसने साल 1975 से 1979 तक कंबोडिया पर राज किया था। इस कम्युनिस्ट सरकार के प्रमुख सालोथ सार थे, जिन्हें पोल पॉट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मार्क्सवादी नेता पोल पॉट ने साम्यवादी विचारधारा को अपनी तरह से परिभाषित किया और इसके बाद कंबोडिया का समाज हमेशा के लिए बदल गया। मार्क्सवादी नेता पोल पॉट कंबोडिया को ग्रामीण यूटोपिया बनाना चाहते थे। उन्होंने शहरों से हटाकर लोगों को गांवों में बसाना शुरू किया। धन और निजी संपत्ति रखना बंद कर दिया गया। उनके शासन में धर्म और आस्था की इजाजत नहीं थी।
खमेर रूज की शुरुआत 1960 के दशक में कंपुचिया साम्यवादी पार्टी की सशस्त्र इकाई से हुई थी। मार्क्सवादी कंबोडिया को तब कंपुचिया के नाम से पुकारते थे। साल 1970 में दक्षिणपंथी सैन्य इकाई ने राजकुमार नॉर्दोम सिंघानुक का तख्ता पलट किया और खमेर रूज राजनीति में उतरकर तेजी से जनसमर्थन जुटाने लगे। करीब 5 साल तक चले गृह युद्ध में खमेर रूज ने कंबोडिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। साल 1975 में खमेर रूज ने राजधानी नाम पेनह पर कब्जा कर कंबोडिया को अपने अधीन कर लिया। पोल पॉट लंबे समय तक पूर्वोत्तर के जंगलों में पहाड़ी आदिवासियों के बीच रहे और उनके आत्मनिर्भर जीवन से प्रभावित हुए।
शासन संभालते ही पोल पॉट ने देश में नई शुरुआत के लिए 0 वर्ष घोषित कर दिया था। उन्होंने अपने नागरिकों को दुनिया से अलग थलग कर दिया और शहर खाली कराने शुरू कर दिए। खुद को बुद्धिजीवी मानने वालों को मार दिया गया। उनके शासनकाल में चश्मा पहनने या विदेशी भाषा जानने वालों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। मध्य वर्ग के लाखों पढ़े लिखे लोगों को विशेष केंद्रों पर प्रताड़ित किया गया और मौत की सजा दी गई।
इनमें सबसे कुख्यात थी नामपेन्हा की S21 जेल, जहां खमेर रूज के 4 साल के शासन के दौरान 17,000 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को कैद रखा गया था। वियतनाम की सीमा पर संघर्ष के लंबे दौर के बाद वियतनामी सेना ने आखिरकार 1979 में खमेर रूज को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन खमेर रूज ने जंगलों में रहकर करीब 20 साल तक लड़ाई तब तक जारी रखी जब तक कि उसके नेता पोल पॉट की मौत नहीं हो गई। इस दौरान लाखों लोग भुखमरी, बीमारी, बेगारी और मौत की सजा के कारण मारे गए। साल 1998 में पोल पॉट की मौत हो गई थी। पोल पॉट के अलावा भी कई प्रमुख खमेर रूज नेताओं की मौत हो चुकी है।
कंबोडिया, खमेर रूज और पोल पॉट के बाद लौटते हैं भारत। शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे कुछ लोगों के लिए हीरो थे तो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े खलनायक। उन पर जहां मराठी मानुष के सबसे बड़े पैरोकार होने का तमगा लगा, वहीं सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनकी जमकर आलोचना भी हुई। बाल ठाकरे की 6वीं बरसी पर रेहान फजल याद कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं को आज की विवेचना में।
जिंदा रहो, जिंदा रहने दो,
ये पॉलिसी थी मेरी, किसी का इसमें कोई द्वेष नहीं था, हेट्रेड नहीं था किसी कम्युनिटी का। हर एक प्रांत में उनका अधिकार होता है, तो मैं मेरे लोगों का अधिकार उनके प्रांत में मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था।
ये आवाज है शिवसेना के नेता बाल ठाकरे की। अपने 40 सालों से भी अधिक के राजनीतिक जीवन में कोई भी ऐसा विषय नहीं हुआ करता था जिस पर ठाकरे की अपनी राय नहीं हुआ करती थी, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या कला या खेल या कोई और भी विषय। बाल ठाकरे इस पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते थे। उनके शब्दों में अक्सर दूसरों के लिए परिहास होता था या नाकाबिले बर्दाश्त तीखापन।
मेरे मन की जलन होती है कुछ कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा मान रखा ना जाए, और ये सेकुलरिज्म के नाम पर, कोई धर्म निरपेक्षता के नाम पर, और कोई धर्म के लोग बहुत कुछ फैसिलिटी हो, कोई सहूलतें हो, वो मिलती है उनको, ये कैसी बात है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
बाल ठाकरे मध्य प्रदेश के मराठी बोलने वाले कायस्थ परिवार से आते थे। बाल ठाकरे की जीवनी हिंदू हृदय सम्राट, हाउ द शिवसेना चेंज मुंबई फॉर एवर लिखने वाली सुजाता आनंदन बताती है।
के जो पिताजी हैं केशव ठाकरे, वैनिटी फेयर के जो ऑथर थे विलियम मेकपीस ठाकरे, केशव ठाकरे विलियम मेकपीस ठाकरे के एडमायरर थे। एज अ ट्रिब्यूट टू विलियम मेकपीस ठाकरे उन्होंने उसका अपना खुद का स्पेलिंग बदल लिया।
दिलचस्प बात यह है कि 60 और 70 के दशक में शिवसेना के मुंबई में जड़े जमाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन दिनों मजाक में शिवसेना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नायक और वसंत दादा पाटिल के नाम पर वसंत सेना कहा जाता था। कांग्रेस से कम्युनिस्टों और पार्टी के अंदर भी विरोधियों को शांत करने के लिए हिटमैन की तरह इस्तेमाल करती थी।
कम्युनिस्ट कांग्रेस को भी परेशान करते थे और ये टेक्सटाइल ओनर्स हैं इनको भी परेशान करते थे। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कांग्रेस के नेता हैं, इन दोनों ने एक साथ मिल करके तय किया कि हमको किसी न किसी तरह से ये इसका कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन का ग्रिप वर्कर्स के ऊपर पे तोड़ना है। तो उन्होंने बाल ठाकरे को आगे किया। वो फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट थे और उस जमाने में ज्यादातर जर्नलिस्ट लोग या ज्यादातर जितने सारे पत्रकार या एडिटर्स वगैरह होते थे वो सारे साउथ इंडियंस होते थे। आर के लक्ष्मण देश के जाने माने कार्टूनिस्ट थे, वो भी फ्री प्रेस जर्नल से ही ठाकरे के साथ ही उन्होंने काम किया, वहीं से निकले हैं वो, और उनके कार्टून हमेशा काफी अच्छे हुआ करते थे और एडिटर आर के लक्ष्मण के कार्टून चुनते थे। और बाल ठाकरे के दिमाग में ये बात गई कि ये पूरा साउथ इंडियन का डोमिनेशन है, तो वो साउथ इंडियन से चिढ़ते थे। बाल ठाकरे के पास फंडिंग कहाँ से आई अगर कांग्रेस ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने मदद नहीं की उनकी तो अपनी पार्टी सेटअप करने के लिए। उन्होंने ठाकरे को आगे किया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस गंदगी में उतरना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बाल ठाकरे को चुनकर के आगे किया।
आपातकाल में उन्होंने सारे विपक्ष को दरकिनार कर इंदिरा गांधी का समर्थन किया। 1978 में जब जनता सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो उसके विरोध में बाल ठाकरे ने बंद का आयोजन किया। सुजाता आनंदन का कहना है कि 1975 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसपी चव्हाण ने बाल ठाकरे को इसके लिए बाध्य किया था।
एसपी चव्हाण अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ठाकरे ऑपोजिशन के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी रैलीज या वगैरह कुछ होती है तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को बोला और दो चॉइस दिया उनको कि या तो आप जेल जाने के लिए तैयार हो नहीं तो दूरदर्शन के स्टूडियो में आकर के बोलो कि तुम इमरजेंसी को सपोर्ट करते हो। और फिर उनको ज्यादा समय नहीं लगा ये सोचने के लिए और फिर वो तैयार हो गए दूरदर्शन जाकर के इमरजेंसी सपोर्ट करने के लिए।
मुझे बाल ठाकरे से मिलने का मौका 2004 में मिला था जब मैं उनका इंटरव्यू लेने उनके निवास स्थान मातुश्री गया था। दुर्भाग्य से उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को कई सालों बाद बीबीसी के ही एक कार्यक्रम में कुछ इस तरह याद किया था।
छोटे से कमरे में एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठे हुए थे बाल ठाकरे, और जो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि वो अकेले नहीं थे। आमतौर से जब हम लोग साक्षात्कार लेने जाते हैं तो वे व्यक्ति अकेला इंटरव्यू देता है और उनके अगल बगल पूरी उनकी कोठरी बैठी हुई थी 15 या 20 लोग। बल्कि मैंने धीमे से उनसे कहा कि क्या हम लोग इन सबके सामने आपसे बात करेंगे, तो बाला साहब ने हंसते हुए कहा कि मुझे कोई चीज अकेले में नहीं करनी, मैं सबके सामने करना पसंद करता हूँ। नाटा कद, भगवा कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की काली माला, काला चश्मा, और जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की मुझे वो थी उनकी बेबाकी और आंखों में आंखें डालकर बोलने की उनकी अदा। बीच इंटरव्यू में मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपकी नजर नगर में बाबरी मस्जिद विवाद का कोई हल निकल सकता है? बाला साहब ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल हतप्रभ कर देने वाला था, बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे की याद में वहाँ स्मारक बनाया जाना चाहिए था। उनका ये कहना था कि पूरे कमरे में एक तरह से सन्नाटा छा गया, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कह रहे हैं और मुझे खुद नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने दोबारा उनसे वो सवाल पूछा और उन्होंने वही बात दोहराई और उस बयान की बहुत चर्चा हुई।
बाल ठाकरे अपनी सार्वजनिक छवि के प्रति बहुत सचेत रहा करते थे। मशहूर पत्रकार वीर सांगवी ने बाल ठाकरे के चरित्र की इस खासियत पर अपने एक लेख में रोशनी डाली है।
मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों के काफी दिन बाद मणिरत्नम ने उस पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया बॉम्बे। इस फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया है। फिल्म के अंत में ठाकरे से मिलता जुलता चरित्र इस हिंसा पर अपना दुख प्रकट करता है। एक मुस्लिम नेता भी इसी तरह के विचार व्यक्त करता है। ठाकरे ने इस फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया और कहा कि वो उसे बंबई में प्रदर्शित नहीं होने देंगे। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन ठाकरे के दोस्त थे। वो उनके पास गए और पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जो चीज बुरी लगी वो दंगों पर ठाकरे के चरित्र का दुख प्रकट करना था। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं प्रकट करता।
एक तरफ ठाकरे भारत के पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें पाकिस्तान के खिलाड़ी जावेद मियांदाद को अपने यहाँ भोज पर बुलाने में कोई गुरेज नहीं था।
क्रिकेट के बहुत ही बड़े फैन थे वो। जावेद मियांदाद ही नहीं, अगर इमरान खान भी राजी होते इनो मातुश्री आने के लिए तो उनको भी खाना खिला सकते थे वो। ठाकरे की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़े थे, 71 का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़े थे वो वंदे मातरम के इश्यू पर पे लड़े थे। जैसे उनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, अभी उनको स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन के लिए उनको 2-3 और वोट्स की जरूरत थी, तो उन्होंने किससे हाथ जोड़ा? कांग्रेस से नहीं जोड़ा, लेकिन उसमें बनातवाला से जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। 10 दिन पहले तक आप मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को गाली दे रहे हो और 10 दिन बाद आपको उनका सपोर्ट चाहिए, तो आप जाकर के उनसे सपोर्ट लेकर के अपना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आप इलेक्ट करवा लेते हो। पाकिस्तान के साथ भी वही था उनका।
बाल ठाकरे के चरित्र के विरोधाभासों को उनके एनसीपी नेता शरद पवार के संबंधों से परखा जा सकता है। दिन में वो पवार को आटे की बोरी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे और उसी शाम को उन्हें उनकी पत्नी प्रतिभा और बेटी सुप्रिया को अपने घर रात्रि भोज पर आमंत्रित करते थे। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं,
बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो ताउम्र उनके दोस्त बने रहेंगे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन किया। वो बोले, शरद बाबू मैं सुन रहा हूँ हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही हैं और तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं, मुझे ये खबर दूसरों से क्यों मिल रही है? मैंने कहा, शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं। ठाकरे बोले, मैंने उसे तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ नहीं लड़ेगा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैंने उनसे पूछा, आप बीजेपी का क्या करेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है? उन्होंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, कमला बाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा।
फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से बाल ठाकरे की पुरानी दोस्ती थी। दोनों का अक्सर एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता था, लेकिन जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज स्वीकार कर लिया तो बाल ठाकरे ने उसके विरोध में शिव सैनिकों को उनके यहाँ अंडरवियर में प्रदर्शन करने भेजा। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शेडो में बाल ठाकरे के कोमल पक्ष पर रोशनी डालते हुए एक किस्सा बताते हैं।
बाल ठाकरे और उनकी पत्नी मीनाताई बहुत जबरदस्त मेजबान थे। मेरे लिए हमेशा उनकी सरलता का हिस्सा बनना एक आनंददायक चीज हुआ करती थी। अपने अलग अंदाज में मीनाताई उन्हें जमीन से जोड़े रखती थीं। एक वही थीं जो हम जैसे पुराने दोस्तों से हमेशा संपर्क में रहती थीं। वो हमें अक्सर अपने घर पर खाने पर बुलाती थीं। एक बार मुझे और सायरा को एक दोस्त के यहाँ खाने पर बुलाया गया जहाँ ठाकरे दंपति भी बुलाए गए थे। उन दिनों सायरा की पीठ में जबरदस्त दर्द था। मीनाताई की आंखों से ये बात छिपी नहीं। उन्होंने बाला साहब को भी ये बात बता दी। बाला साहब ने सारी पार्टी रोक दी और रसोई में चले गए। उन्होंने एक खाली बोतल मंगवाई, उसमें एक बर्तन में पानी गर्म करके भरवाया और सायरा से कहा कि वो उसे दुखती हुई पीठ पर लगाकर बैठ जाएं। उनकी पत्नी और बहू ने सायरा से कहा कि जब वो घर पर बीमार पड़ती हैं तो वो इसी तरह की चिंता उनके लिए भी दिखाते हैं।
पाल ठाकरे सिगार और बियर पीने के शौकीन थे। सार्वजनिक तौर पर शराब पीने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। 1995 में जब उनकी पार्टी की जीत पर एक पार्टी दी गई तो उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि वहां जीत की खुशी में शैंपेन का प्रबंध क्यों नहीं है।
ठाकरे इतना परेशान हो गए थे सिर्फ फ्रूट जूस पी करके, क्योंकि उनकी आदत थी कि हर शाम को वो कम से कम 2 बोतल बियर पिया करते थे। उन्होंने फिर डॉक्टर हीरानंदानी को बोला कि डॉक्टर हीरानंदानी, यू आर एन ENT स्पेशलिस्ट, ई इज फॉर द ईयर यानी ई कान के लिए, और मुझे बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुनाई आ रहा है। N इज फॉर नोज यानी नाक के लिए, और मुझे बहुत ही खुशबू आ रही है जो जितना भी खाना बन रहा है अंदर किचन में। टी इज फॉर थ्रोट यानी कंठ के लिए है, और मेरा कंठ एकदम सूख रहा है। डॉक्टर हीरानंदानी बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने तो ये दारू नहीं हम ला सकते। मनोहर जोशी जो चीफ मिनिस्टर, थोड़ी दूरी पर पे खड़े थे। बाल ठाकरे की इतनी ऊंची आवाज, और फिर उन्होंने उसको और ऊंचा करके, उन्होंने फिर मनोहर जोशी की तरफ देख करके बोला, कायरे मान्या तू पीतो सुनाई का, इसका मतलब कि क्या मनोहर तुम पीते नहीं हो क्या। मनोहर जोशी कुछ कह नहीं सके। फिर उसके बाद बियर वगैरह सब लाया गया।
बाल ठाकरे पर आरोप था कि उनकी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री क्यों न हो, प्रशासन का रिमोट कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहता था। एक बार BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा था,
भाई साहब रिमोट कंट्रोल क्या होता है? एक नया टर्म हो, जैसे कि वहाँ के वो हाई कमांड होते हैं, इस ढंग से मैं रिमोट कंट्रोल हूँ। रिमोट कंट्रोल का इतनी ही एक बाकी होती है कि TV का चैनल बदलना, वहां जाके बदलने से आप बैठ के बदल सकते हैं। और ये सच नहीं है कि मैं बार बार मेरे चीफ मिनिस्टर बदलता हूँ, नहीं। जैसे कि मेरे विरोध वाले जो हैं, कोई लोग हो, पार्टियां हो, जो जैसे उनके खेली होती है, वो तो खेल मुझे भी खेलना होगा।
मराठी मानूस के सबसे बड़े पैरोकार, हिंदू हितों के रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे ने सिर्फ अपने मूथे पर मुंबई को बदल कर रख दिया। न सिर्फ उसका नाम बल्कि उसका चरित्र और ताना बाना भी। बाल ठाकरे का आकलन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार कुमार केटकर कहते हैं,
उद्धव जी और राज हो या नारायण राणे हो या छगन भुजबल हो या मनोज जोशी हो या संजय राउत हो, किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है कि जो पूरे महाराष्ट्र के युवा को अपील कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल ठाकरे का अपील पूरे महाराष्ट्र में था। पश्चिम महाराष्ट्र में उनका बहुत ही कम अपील था। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी उनका ज्यादा सपोर्ट नहीं था। उनका शक्ति स्थान था मुंबई, और शक्ति स्थान दूसरा बन रहा था पुणे। शहरी विभागों से बाहर ग्रामीण विभागों में, फार्मर्स में शिवसेना का ज्यादातर कोई रोल नहीं रहा था।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
वक्त हो चला है दिन भर के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। केरल के सबरीमला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची महिला कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को प्रदर्शनकारियों ने कोच्चि हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया, जिसके बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया है। तमिलनाडु तट से टकराने वाले शक्तिशाली तूफान गज से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश हो रही है। यूरोपीय नेता सोचे समझे शब्दों में ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के ब्रेग्जिट समझौते का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मे ने यूरोप से अलग होने के समझौते को कैबिनेट से तो पारित करवा लिया है, लेकिन उन्हें देश की जनता और संसद के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे संसद में 3 दिनों के भीतर दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव में हार गए हैं। शुक्रवार को संसद में हंगामे का माहौल रहा। इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास में कत्ल किए गए पत्रकार जमाल खाशोजी के जनाजे की नमाज मक्का मदीना की पवित्र मस्जिद में पढ़ी गई। उनके बेटे सालाह भी इस प्रार्थना में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायालय में कंबोडिया की खमेर सरकार से जुड़े 2 अधिकारियों को नरसंहार का दोषी पाया गया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे शाकिर आलम, हमें आप तक पहुंचा रहे थे। अब संदीप सोनी को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन सुनना ना भूलें नमस्कार भारत, भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। शुभ रात्रि।